أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تیسری دنیا جس میں افریقہ بھی شامل ہے اور بہت سے ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں اور جنوبی امریکہ کے بھی بہت سے ممالک شامل ہیں ان کے مسائل دن سے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ الجھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں ان تمام مسائل کی بہت سی وجوہات ہیں بہت سے مددات ہیں بہت سے عوامل ہیں ان کے نتیجے میں یہ مسائل بڑھ رہے ہیں لیکن اگر ایک وجہ تلاش کی جائے تو آخری رخ جس کے گرد سارے مسائل گھومتے ہیں اور پھر بڑھتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ نقطہ جھوٹ کا نقطہ ہے. میں نے بڑی گہری دل سے افریقہ کے حالات کا بھی جائزہ لیا ہے, مشرقی دنیا کے دیگر ممالک کے حالات کا بھی جائزہ لیا ہے. اگر سے بیرون رجحان یہی پایا جاتا ہے کہ ہر نفس اور ہر برائی کو مغرب کے سر پر سونپ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مغربی دنیا نے ان ممالک کو ایسا مسائل میں الجھا رکھا ہے کہ ہوش نہیں آنے دیتے, لیکن ہمیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی دنیا بھی کسی دوسری دنیا پر غالب نہیں آ سکتی جب تک اس دنیا میں اندرونی کمزوریاں نہ ہوں. وہ جس جو صحت مند ہوں وہ جراثیم کے گھیرے میں رہتے ہیں, ہر سانس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں, غذا کے ہر لکھنے کے ساتھ جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ صحت مند جسموں کے اندر جفاقی طاقت موجود ہوتی ہے. جب انسان کی جفاقی طاقت سے کمزور ہو جائے تو چھوٹے سے چھوٹا جسم کا بھی چھوٹی سے چھوٹی بیرونی طاقت بھی اس پر قبضہ پانے کی اہمیت تک کیا جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ مغربی دنیا کا جو بھاری نظام ہے وہ مشرقی دنیا کے لیے اور تیسری درجے کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے سارے نقصان پہنچ رہے ہیں درست نہیں ہے. تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے جس کے نتیجے میں مشرقی دنیا دن بدن اور زیادہ مختصر حال میں خراب ہوتی دنیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کی عمر فوائد ہے, اگر شراب میں کوئی فوائد ہے اور ضرور درست ہے تو جھوٹ کو عمر قواعد کہنا ناجائز نہ ہو. تمام اسی لیے ایک لمبے عرصے سے میں دماغ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جھوٹ کے خلاف لڑائی شروع کریں, दुनिया का कोई मुल्क भी झूठ की आदत के साथ ना अपना दिफा कर सकता है ना किसी पहलू से भी दुनिया में तरक्की कर सकता है और कोई भी कौम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती है उसके अंदर झूठ की बीमारी न हो। और जहां तक मदनी निवासों का ताल्लुक है मदनी निवासों के लिए भी झूठ एक गहरे कातिल का हुक्म रखता है और ऐसी जमातें जो झूठ में मुबतला हैं और मदनी जमातें हैं वो खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डूबती है क्योंकि उन पर इंसाफ किया जाता है उनको बताने में रहनुमाई के लिए पैदा किया जाता है। इसलिए अगर वो खुद झूठ की बीमारी में मुबतला हो जाए तो तमाम रहनुमाई की कराहियों से जारी हो जाती है तमाम चूंकियों से रस्ता रस्ता ताल्लुक तोड़ना शुरू कर देती हैं जो उनको जरूरत के नतीजे में अदा होती हैं और तमाम बदलियों से उनके रवाबे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस पहलू से बावजूद इसके पहले भी बारहा में खुतबात में झूठ के खिलाफ जहाज करने की तकलीफ दी थी मगर इसकी अहमियत के पेश नजर एक या दो या चार खुशबू की बात नहीं मैं समझता हूं कि बार बार जमात को इस तरह मौके देकर लेने की जरूरत है। जर्मनी में क्योंकि पाकिस्तान से आने वालों की तादाद जमाती जहाज से बहुत ज्यादा है इसलिए एक बुराई जो उनके आने के साथ जर्मनी के मुल्क में स्मगल होती है वो झूठ है। इसमें हरगिज़ कोई शक नहीं कि खुदा ताला के फजल से जवाब अहमदिया पाकिस्तान का मेयार अपने जिंदो पेश के मेयार की नस्बत बहुत बेहतर है। हर अखलाकी नुकतः निगाह से हर अखलाकी पहलू के लिहाज से जवाब अहमदिया खुदा के फजल से इम्तियाजी तौर पर बेहतर है लेकिन इसके बावजूद ये कहना दुरुस्त नहीं है और यकीनन झूठ है कि पाकिस्तान की में बसने वाली जमातों में इस झूठ की आदत बिल्कुल मतलूब हो चुकी है खत्म हो चुकी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां इलाकाई असरात के नतीजे में झूठ आम है और सवाए उन मुत्तकियों के जिनकी जमात थोड़ी है जो बिल इरादा अपने आप को झूठ की नजाकत से पाक रखते हैं अहमदियों के अंदर एक तबका ऐसा है जिसमें झूठ की वो शिद्दत ना सही मगर झूठ की मिलौनी उनकी बातों में नहीं पाई जाती है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में खा वो झूठ ना भी बोलते हों जब जरूरत पेश आती है तो उससे परहेज नहीं करते। अब ये दो अलग अलग बातें हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बड़ा रास्ता रखती हैं। एक सोसाइटी जिसमें झूठ की शर्म उठ जाए वहां झूठ इस तरह बोला जाता है जैसे जिंदगी के साथ दिए जाते हैं और कोई हैरान नहीं होती और कोई रोक थाम नहीं होती। ऐसे लोग बेटकर घर में भी झूठ बोलते हैं अदालतों में भी झूठ बोलते हैं दफ्तरों में जब काम के दौरान में वहां भी झूठ बोलते हैं वह झूठ उनकी फिक्र के सामने बन चुकी होती है। इस तरह से खुदा ताला के फजल से जमात अहमदिया की अक्सरियत का ये बदतर हाल नहीं है ऐसा अक्सर हाल नहीं है लेकिन जब जरूरतें पेश आती हैं उस वक्त झूठ बोल देते हैं और ऐसे मुत्तकी खुदा ताला के फजल करने के साथ जो हर हाल में झूठ से प्रवेश करते हैं उनकी तादाद थोड़ी है। सुन्नत मिनल अवलीन तो होते लेकिन सुन्नत मिनल आखिरी नहीं है। इस कुरान के कुरान करीम के बयान से उनका मुद्दे को कोई नजर रखना चाहिए। वो लोग जो नेकियों में बहुत सबकत ले रहे हैं उनके मुताबिक कुरान करीम फरमाता है अवलीन ने यानी हजरत अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोगों में वो एक बड़ी जमात और आखरीन में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन वो बड़ी जमात के तौर पर नहीं होंगे। विस्तृत तालाब के लिहाज से उनकी तालाब वो थोड़े होंगे और गालिब अक्सरियत तालाब नहीं किया जा सकता। बस ये वो पेशगोई है जिसे हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशगोई की गलत से थी कि तुम इस पर मैनान पा रहे। ये पेशगोई की गलत से थी कि हमें मुतवज्जे किया जाए कि तुम जिस बुलंद मुकाम के लिए पैदा किए गए हो अभी तक इस बुलंद मुकाम को पा नहीं सके, और अपनी हालत से इसलिए गाफिल रह जाना कि तुम्हें कुरान करीम ने अव्वलीन से मिलाने की कुशल दी है। तुम अव्वलीन से मिलाए तो जाओगे लेकिन सुलभ के तौर पर नहीं। ऐसी बड़ी तादाद में जैसा कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुखलिसीन और मुतकद्दमीन की जमात मौजूद थी, इतनी बड़ी तादाद में तुम नस्बत के लिहाज से नहीं रहोगे। हां, दरमियाने दर्जे के नेक लोगों में तुम बहुत बड़ी तादाद में पाए जाओगे। बस ये पेशगोई ये बताने के लिए थी कि हम दिन ब दिन और ज्यादा निगरान हों और ज्यादा तवज्जो और कोशिश करें अपने दरमियाने दर्जे की अक्सरियत को अव्वल दर्जे की अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और इस जीवन में सबसे अहम बात सच्चाई का बयान है और झूठ से गले है। झूठ क्यों गले? मैंने कहा कि झुका बात बहुत से अहम नहीं, जब उनको जरूरत पेश आती है तो झूठ बोल जाते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो मौजूद हैं, जब उन्होंने जर्मनी आने के लिए गवर्नमेंट क्रॉस किए, जब अदालतों में पेश हुए, जब उनसे पूछा गया कि कैसे आए थे, किस तरह दाखिल हुए थे, पासपोर्ट दिखाओ, तो हर कदम पर उनमें से बहुत सी तादाद ऐसी है जिन्होंने जरूर झूठ बोले होंगे। क्योंकि अमूमी तौर पर जब मुलाकात के दौरान मैं जायजे लेता हूं तो मुझे इस मालूम करके सब शर्मिंदगी होती है और तकलीफ पहुंचती है कि अगर से मेरे सामने झूठ नहीं बोलते और झूठ बोलकर अपने पहले झूठ पर पर्दा नहीं डालते, लेकिन पहले झूठ बोला होता है। अब ये एक इंसान है कि मालूम हो जाएगा कि महादान दिया में झूठ बोला भी जाता है तो दूसरों से बाहर आ जाता है। बात करें मुबारक नहीं है प्रधानमंत्री बोलना, और ये भी ऐसा एक लड़ो मुहावरा है हमारे मुल्क में लाए, जब आप किसी से पूछें कि सब लोग रह सकते हैं तो आगे सामने नहीं बोलते। झूठ को खुदा के सामने बोला जाता है या नहीं बोला जाता, बंदों के साथ चर्चा चालू है। अगर झूठ बोलोगे तो जहां भी बोलोगे खुदा के सामने बोलोगे, नहीं बोलोगे तो जहां भी बोलोगे खुदा के खातिर नहीं बोलोगे। मगर चूंकि ये रिवाज है कि कुछ थोड़ी बहुत दया और शर्म व्यवहार मौजूद है, बाद लोगों के सामने आकर कि वो कहते हैं हम आपके सामने सच्ची बात कर देते हैं, और बाद वहां भी किसी बात नहीं कर रहे होते, मुहावरा बन जाते हैं। और अक्सर हमारे मुल्क में ये रिवाज है, क्योंकि इसलिए निवेदन है कि अक्सर लोग वहां अपने झूठ को पक्का करने के लिए और सच बनाकर दिखाने के लिए ये भी कह देते हैं कि आपके सामने हम झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए यकीन करें कि जो झूठ बोल रहे हैं वो सच है। इतनी गहराई के साथ झूठ हमारे माशरे में लाया जा चुका है, हिरासत हो चुका है, जिंदगी जय कर चुका है कि एक दो दफा हिलाने से ये झूठ का पौधा रुपया मिल जाएगा। बार बार मुसलसल करोड़ों की जरूरत है, जिस तरह आप अक्सर जमींदार हैं आप जानते हैं कि खेतों में जब गैर पौधे दाखिल हो जाएं और गहरी जड़ें पकड़ जाएं तो एक या दो मरतबा की नदाई उनको उखेड़ने के लिए काफी नहीं हुआ करती। एक दफा आप मेहनत करते हैं, नदाई करते हैं, फिर दूसरी दफा करते हैं, फिर तीसरी दफा करते हैं और बगैर से शामिल हो जाता है, लेकिन जड़ें मौजूद होती हैं, इसलिए चौथी दफा फिर जरूर पेश आ जाती है। बार बार खेती में साल साल मेहनत करनी पड़ती है, और अगर माहौल में वो जड़ी बूटियां मौजूद रहे तो एक जिम्मेदार शख्स कितना भी नियमित होना हो, कितनी एहतियात के साथ भी अपने खेत को इन गलत बूटियों से पार करने वाला न हो, फिर भी बार बार माहौल से उड़कर उसके खेतों में भी वो गलत जड़ी बूटियां जल सकती रहती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के एमएलओं का यही हाल है, साल हर साल से जमात अहमदिया के मुख्तलिफ इदारे, जमात अहमदिया के मुख्तलिफ समिति में कोशिश करती हैं और करती चली आ रही हैं, लेकिन क्योंकि माहौल बहुत गंदा और गंदा हो चुका है, इसलिए हर तरफ से धूल दाखिल होता चला जाता है और बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है। इन मुल्कों में आने वाले एमएलओं को वहां के मुकाबले पर एक फायदा और एक कॉपियत हासिल है। यहां अगर वो दयानदारी और सत्ता के साथ झूठ के पौधे को दर्ज करने की कोशिश करेंगे तो चूंकि बाहर के मुआवजों में मजबूरी दुनिया के मुआवजे में झूठ की आदत नहीं है, बहुत ऊंचे मकाम पर बड़े मकासद के लिए झूठ बोलते हैं। रोजमर्रा की शहरी जिंदगी में झूठ एक शादनादन की चीज है, पके हुए मुझे भी बोल देते हैं, लेकिन आम सोसाइटी झूठ नहीं बोलती, वो वाकई भी नहीं है कि झूठ बोला नहीं जाता है। ऐसे माहौल में अगर एक दफा आपकी सफाई हो जाए तो खुदा तआला के फज़ल से इस बात का की भारी तवक्को रखी जा सकती है कि लंबे अरसे तक आइंदा आने वाले नस्लों तक भी आप लोग झूठ से पार रहेंगे। इसलिए यहां आकर सलाम लेना है तो खुदा की सलाह है और शैतान से सलाह है। हिजरत करनी है तो वो हिजरत करें जो अल्लाह और रसूल की तरफ से हिजरत हुआ करती है, और उस हिजरत में सबसे अहम बात यह है कि झूठ की सरजमीन से हिजरत करके सच्चाई की जमीन में दाखिल हो जाए और सच्चाई की तरह में आ जाए। ये काम बहुत मुश्किल और मेहनत तलब है, और इसमें ये कहना कि फलां जमात का अहदेदार है, फलां इस हैसियत का आदमी है, फलां चंदे देता है, फलां नमाजें पढ़ता है, इसलिए झूठी बोलता होगा, ये भी गलत है। क्योंकि बाद दुराइयां बाद नीतियों के साथ भी गलत की जाती हैं, और अगर प्रवचना की जाए तो रस्ता रस्ता नीतियों को साथ में, इसी तरह बाद नीतियां बुराइयों के को रस्ता रस्ता दायर करती चली जाती हैं और ये दूसरे जिंदगी की जो जरूरत है। इसलिए ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि क्योंकि प्राण शख्स में प्राण लेती है इसलिए वो झूठ से झूठ की पार करा रही है, और ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि क्योंकि प्राण शख्स झूठ बोलता है इसलिए वो नमाजें भी नहीं करता, उसका खिदमत करना भी बेमानी और गलत है, उसका चंदे देना भी बेमानी और गलत है। ये दोनों अध्यायें हैं जो गलत हैं। मम्मी को सत्ता के साथ काम लेना चाहिए, आय के साथ साथ में जोड़ना चाहिए। वो लोग जो ये ताने देते हैं कि कुरान शरीफ देखते हैं कि नमाजें लेते पड़ता है, अगली चंदे देता है और झूठ बोल गया, ये एक मैच घटिया ताना हमें भी है। हर चीज के अपने अपने काम है, अपने अपने मकाम हैं, और जिंदगी को इस तरह नहीं लिया जा सकता कि या कुल अतन बात हो या कुल अतन बात, दोनों अमीरिशें हैं, बदी थी और दूसरी की और बाकी की एक साथ साथ चलती है। मोमिन का काम है जिसे दुरुस्त करता चला जाए, अपनी बदलियों को कम करता चला जाए और अपनी नेकियों को बढ़ाता चला जाए। इस हकीकत पसंदी के साथ हमें अपनी इस्लाह के लिए आगे कदम बढ़ाने हैं, और इस इस्लाह की जस्तुजू में सबसे पहले सच की जस्तुजू हुई है। अगर बुराइयां हटानी हैं और रफ्ता रफ्ता हर किस्म की बदियों से पार करना है तो सबसे पहला कदम झूठ से पार करने का कदम है। इस दफा जो लोग बाहर से तशरीफ लाए उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें दलील है जो में आ रहे हैं, और इंग्लिस्तान के अपने पीछे इस तरह एक झूठ की नीति छोड़ा है
जिस तरह शांत करता है तो अपने पीछे रस्ते पे नदी को लगता है। उन गुरुओं के नाम दाहिर करना जिनको नजायज करना मुनासिब है। और ये भी इनका लक्ष्य करके कितने हैं, लेकिन बाद से जाने के बाद उनके बाद दूध में रेलवे में आए और यूनिवर्सिटी पर भी पहुंची। इसलिए मैंने उससे फैसला कर लिया कि जर्मनी की जमात में जो खुदकार मंगा उसमें सबसे ज्यादा अहम नतीजत झूठ से पहले की नतीजत होगी। झूठ के मुकाबले पुराने कहीं ने जो मुख्तलिफ मौके पर बड़ी शिद्दत के साथ इसे बार लेने की हदायत फरमाई है, उसमें सबसे ज्यादा जोर इस तरह में दिया गया कि झूठ को शिर्क के हम पल्ला करा दे दिया गया। झूठ और शिर्क को आपस में इस तरह जोड़कर बयान किया गया एक ही चीज के दो नाम बन जाते हैं। पर याद रखें कि हकीकत यह है कि झूठ की नफ्सियात एक शिर्क की नफ्सियात के मुताबिक है, दोनों की बुनियादें एक जैसी है। आगे जाकर कुछ रस्ते बदल जाते हैं और बुराए अख्तलाफात हो जाते हैं, मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर लेते हैं दोनों, लेकिन हकीकत में झूठ और शिर्क दरअसल एक ही जड़ के दो दरख्त हैं। और खसूसियत के साथ शिर्क के हसी तो खाली से तन झूठ पर पड़ता है और झूठ शिर्क पर पड़ता है। अब आप देखें कि आप नजारा एक तसव्वुर माने एक खरगोश का जो एक घास के छोटे से मैदान में तीन जगह के बाहर निकलता है और उसको इंडियन झाड़ियां होती है। जब वो किसी खतरे को महसूस करता है, किसी कुत्ते की आवाज सुनता है या शिकारी बिल्ली का साया पड़ता देखता है तो एक दो छलांगियां लगाकर वो किसी झाड़ी में घुस जाता है, किसी चारों तरफ झाड़ियां होती है। इसलिए कि वो जानता है कि यहां जितना मिले और जब तक पनाह का यकीन न हो वो उस खुले मैदान में जुर्रत के साथ आकर घास चर नहीं सकता। यही हाल झूठे का है और वो झाड़ियां जो इसलिए झूठ की झाड़ियां होती हैं वो उसकी पनाह का बनती है। और घास के मैदान की मिसाल उसके बदलों की मिसाल है। एक झूठा शख्स जब दुराइयों में मुबतला होता है तो उसे भी खतरा होता है कि वो पकड़ा ना जाए और उसे सुधार ना मिले, लेकिन हर बुराई के वक्त उसका सहारा झूठ होता है और उसकी नीयत में सहारा दाखिल होता है। अगर वो बुराई के वक्त अपनी नीयत का तजिया करे और ये सोचे कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं क्या करूं, उस वक्त दरअसल उसकी नीयत की हकीकत उस पर वाले हो सकती है। लाजमन हाई एक्सपीरियंस अपने नफ्स को ये जवाब देगी कि मैं ये बहाना बनाऊंगा और वो बहाना बनाऊंगा, ये झूठ बोलूंगा या वो झूठ बोलूंगा। जो निश्चितन बेवकूफ लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं और जो निष्पतन चालाक लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं और दोनों झूठ के सहारे रहते हैं। फिर तब यह होता है कि झूठ को अच्छा बहाना बनाना नहीं होता और चालाक आदमी ने निष्पतन ज्यादा देर से बहाने बनाते हैं, लेकिन जितनी भी झाड़ियां उनकी बना रहे हैं उतना जरूर अगर उनके सामने ये सवाल तो पेश हो अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा और जवाब में हूं कि मैं सच बोलूंगा, तो फिर वो उस घास के मैदान में चना लगाकर बेफिक्र होकर वो घास करने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ की झाड़ियां उससे दूर हट गए हैं और इसलिए उसे थोड़ा और झाड़ी दिखाई भी देगी और वो महसूस करेगा कि वह नंगा हो गया। और अगर वाकई तन कोई जुर्म से सरगर्द हो और पकड़ा जाए तो पहले नीयत नाम ही हो तो बहुत बड़ा इतला इंसान पर पेश आता है और उस वक्त वो कहता है अच्छा फिर इंद्रम झूठ बोल देता है। तो जिस शख्स की परम रूप है उसकी रात में खुदा कैसे रात होता है। खुदा तारा ने तुम्हें यह सिखाया कि आओ मिलता है मैंने शैतान से दी, मैं कहा मानता हूं अपने रब की शैतान रजीम से, और शैतान रजीम झूठ है। झूठ की एक मुजस्म शक्ल का नाम शैतान। तो एक तरफ तो गुलाम ने उसे यह सिखाया हो कि कदम कदम पर ये दुआएं मांगो कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, दूसरी तरफ हर कदम पर वो जानता हो कि खुदा की पनाह उसके काम नहीं आएगी, उसका दिल दुआई देता हो कि ये सर की पनाह है, असल पनाह शैतान की पनाह है। हर तरफ से वो झोली खोलकर मुझे अपनी झोली में पनाह लेने के लिए तैयार रहता है, और कहता है उस लोग जो सलमान अपनी झोली फैला देती है बच्चे को उठाने के लिए, उस तरह वो शैतान की झोली को देखता है और उसमें छलांग लगाकर पनाह देने की नीयत से जुर्म करता है। ये एक हकीकत है, और तीसरी दुनिया हो या कोई और दुनिया जहां भी आप जाएंगे वहां आपको झूठ और जुर्म का यही रिश्ता दिखाई देगा। अल्लाह वाला बनने के लिए जरूरी है कि इन झूठ की झाड़ियों का स्वागत काम किया जाए, और हर कदम पर ये फैसले किए जाए कि अगर मुझसे कोई जुर्म संदर्भ हो तो मैंने झूठ की तनाव हरगिज नहीं देनी, और उस फैसले के बाद जुर्म की सजा को दूर करने के लिए अपने नफ्स को आमादा कर दिया जाए। ऐसी सूरत में बसा औकात अल्लाह ताला मक्सद समझाता है और ऐसा शख्स इस्तेमाल में डाला ही नहीं जाता, और अगर डाला जाता है तो क्योंकि खुदा की खातिर और तौहीद की खातिर वो एक सजा को खुशी से दूर करता है, उसके अंदर गैर मामूली बात कर दीजिए पैदा होती है। इसलिए जब तक केंद्र की झूठ की झाड़ियां हैं आपको इल्म ही कोई नहीं कि खुदा की तनाह में आने का मतलब क्या होता है, और जब तक आप खुदा के लिए पनाह गाहें खुदा की पनाह गाहें ढूंढे नहीं, ना आप पनाह में आ सकते हैं ना दुनिया को पनाह में ला सकते हैं। ये गहरा मुसलसल जुनून है, झूठों को खुदा की तनाह मिलने लगा है, और झूठे दुनिया को पनाह मिल सकते, और खासतौर पर ये कहकर कि हम उन्हें खुदा की तनाह की तरफ बुला रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं इन मुझे, पर इस बात को मामूली न समझें, गौर करें इस पर। खुदा रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं दाखिल होगा जब तक आप झूठ से छुटकारा हासिल न करें, और खुदा तला की तनाह के निशान आप नहीं देख सकते जब तक आप झूठ की गुनागानों से मुंह मोल न दें, और ये निशान झूठ की जगह लेने आपको पनाह देने के लिए तैयार रहते हैं। ये कुछ सच्चे निशानात नहीं है, ये ऐसे निशानात हैं जो रोजमर्रा मोमिन की और सच्चे मोमिन की जिंदगी में उसके सामने जाहिर होते चले जाते हैं, और उसकी सारी जिंदगी खुदा के सहारों पर चलती है, खुदा के सहारों पर ही उसका जिंदगी का सफर होता है, और खुदा की पनाहगाहों के बगैर वो जिंदा रह नहीं सकता। ये वो तजुर्बा है जो सच्चे के नजदीक होता है, और उसके बगैर इस तजुर्बे के बगैर मोमिन की जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं करा सकता। इसलिए मैं आपको फिर ताकीद से कहता हूं कि झूठ से इस्तेफाद करें और झूठ से तौबा करें, वरना आपका खुदा से सच्चा ताल्लुक नहीं कायम होगा। बाकी सब बातें करती हैं। झूठ से तौबा करना एक कदम की तौबा नहीं है, बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप झूठ से तौबा शुरू करेंगे तो एक झाड़ी के बाद आपको दूसरी झाड़ी दिखाई देने लगेगी, एक जाल फेड़ेंगे तो एक और वाली दिखाई देने लगेगी। और आपने क्योंकि अक्सर जिम्मेदार लोग हैं, आप इस बात को आजादी के तरह रखते होंगे कि खेतों की सफाई के वक्त जब इंसान पहली सफाई करता है तो जाहिर होने वाली नजर आने वाली झाड़ियों के बाद से उनके पीछे छुपी हुई दूसरी झाड़ियां और जड़ी बूटियां भी दिखाई देने लगती हैं। उनकी सफाई करते हैं तो फिर कुछ जड़ें फिर निकाल देती हैं और इंसान समझता है करिए और भी सफाई होने लगी। तो सफाइयों का सिलसिला तो एक लंबा सिलसिला है। एक छलांग में ये सारे मनाजिर तय नहीं हो सकती, ये सारी मनाजिर एक छलांग में तय नहीं हो सकती, लेकिन एक छलांग जो दादन नामी होगी उसके बजाय अगली छलांग होगी तो अभी नहीं मिल सकती। इसलिए हर वो शख्स जो इस रस्ते पर कदम बढ़ाना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि अपने लिए नमूने कहीं एक गलत आदत चुन ले और उससे छुटकारा हासिल करें। बहुत से और भी ऐसे मुहल्लिकात हैं जो सोसाइटी में झूठ की मदद करते हैं, जहां तक अमूमी माशरे का ताल्लुक है उनसे भी हमें परहेज की जरूरत है, ताकि माहौल भी ऐसा बने जो सच्चों के लिए साझदार हो जाए। उन बदकसरतों और बद आदात में से एक आदत हमारे मुल्क में बैठकर गप्पे मारना है, और ये वो आदत है जो आगे के झूठ को पैदा करने में बहुत मुमकिन बनती है। दोस्त बैठते हैं और इतना वक्त उनको मिल जाता है पता नहीं कहां पे कि मरीज से लगाकर गप्पे मारते हैं, और जिसको वो गप कहते हैं उसके मुतालिक वो समझते हैं कि झूठ नहीं है। और चूंकि मशले की बातें होती हैं, बाल ऐसी जमीनें होती हैं जो जिनको नोमन ग्रैंड कहा जा सकता है, वो दरअसल न झूठ की जमीन होती है न सच की जमीन होती है। जितने लताइफ हैं, जितनी कहानियां हैं, मजालिस की गपशप है, ये इसी जमीन से तल्लुक लड़ती है। आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जिक्र मुस्तबेहात के तौर पर सुनाया। आपने सुनाया कि देखो बादशाहों की रक्षा हुआ करती जिनकी वो हिफाजत करता है, और अगर उन लोगों में जो गैर चला जाए तो वो खुदा का है, जो खुदा तला की हजूद हैं उन वो उन लोगों का मुकाम रखती जिनसे तजावी करना खुदा तला की नाराजगी मोल लेने के मुकमी बनता है। हमारा अलहराबर बही नहीं अलहरा में बनी ये खुदा की रक्षे जो हैं ये हमारे लिए हराम है। ये बड़ी बड़ी खुली और वादे रखते हैं, इनकी सरहदें पता लग जाती हैं कि कहां से शुरू होती हैं। वह हराम बही हैं, वह हराम बही हैं, और इसी तरह वो बातें जिनकी खुदा ने इजाजत दे रखी है खुलम खुला साफ तौर पर हमें मालूम है और उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। इन दो के दरमियान कुछ ऐसी नदीने हैं जिन्हें मुस्तबेहात कहा जाता है, यानी जिसे हम आजकल के इस्तेमाल में फौजी इस्तेमाल में दो मैन ग्लैंड कह सकते हैं, या दो रूटों के बॉर्डर्स के दरमियान जो छोटा सा इलाका छोटी सड़क होती है जिस पर न एक कब्जा करता है न दूसरा कब्जा करता है, आप समझौते में दीजिए वो भी दो मैन ग्लैंड है। हमारा बार जो इस्तेमाल अपनी जगहों को नो मैन ग्लैंड में चलाती है और वो समझते हैं कि कोई खतरा नहीं, लेकिन भेड़ों की आदत होती है कि वो हर तरफ मुंह मारती है, इसलिए हर भी गरीब नहीं कि वो भेड़ें बादशाह की रखने में दाखिल हैं। इसलिए अपने अमाल की निगरानी रखो, जहां तुम समझते हो कि कोई खतरे की बात नहीं, वादे तौर पर हराम बात नहीं है, इसलिए करने में हर्ज नहीं, वहां खतरा जरूर पेश आता है क्योंकि इंसानी फिक्र भेड़ों की तरह हर जगह मुंह मारने की आदि होती है, और जिस तरह भेड़ों को आकर नहीं होती कि कहां मुंह मारना है, इसी तरह इंसान जुर्मों के इरतकाब में भेड़ों का समर्थन रखता है और रफ्ता रफ्ता आम घास के मैदान से हटकर जब हरी भरी वो घास नजर आए जो बादशाह की रख में खासतौर पर पाई जाती है तो दिन में विशेष कलर हो जाती है, नाविक कलर हो जाती है, और जो मालूम बाद में देखे काम अपने आप रोक नहीं सकता। इसी तरह गप्पों का हाल है, गप्पे भी गर्भगृह के नो मैन लैंड हैं जो फिर गिराकर झूठ में दाखिल हो जाती है, और गप की वजह से झूठ की शर्म उठती चली जाती है। इसलिए गपशप की मजालिस में भी अगर आप इत्याग नहीं करेंगे और बार बार अपने आप को गलत बयानी से और मुबालगा अंदाजों से रोकेंगे नहीं तो लाजिम है कि आप चलते चलते फिर झूठ में भी दाखिल हो जाएंगे और इस तरह ऐसी सोसाइटियों में झूठ बनने शुरू हो जाता है। एक दूसरी आदत जो हमारे मुल्कों में है वो वैध मजाली की बात करना है। उसके नतीजे में भी इंसान के दाखिल झूठ बोलने का आदि हो जाता है या बात का शर्म महसूस करके मजबूरन अपने आप को एक काबिल शर्म बात से बचाने के लिए झूठ झूठ बना लेने की जरूरत हो जाता है और एक झूठ से फिर दूसरा झूठ दूसरे झूठ से तीसरा झूठ शुरू हो जाता है। जैनवादारी की मिसाल ये है कि आपने जैसे पूछा कलाम बात हो गई है तो उसने झूठ नहीं बोला अंदाजा लगाया तो होगी अत्याचारी हो गई। आप जब जस्तजू करते हैं वो बात नहीं दी होती तो यहां वो फंस जाता है कि ये बताने के लिए कि उसने सच बोला था बजाय सच बोलने के और ये कहने के कि मुझसे गलती हुई थी मैंने अंदाजा लगाया। कोई कहता है कि फ्रांसिस ने मुझसे ये बात की थी उसका ही मतलब निकलता था और इतना मैंने सच बोला है फ्रांसिस ने झूठ बोला है और इस तरह एक से दूसरी दूसरी से तीसरी बात नहीं चली जाती है। मुझे बार बार तजर्बा हुआ है कि ऐसे लोग जो वैसे मदाराना बातें करते हैं वो बिलाकर झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। बात को जिम्मेदारी से करना चाहिए जितनी बात मालूम है उतनी करनी चाहिए जो मालूम नहीं उसके मुताबिक इकरार करना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं है। ये तो अमूमी मुआशरे की बातें हैं जिनमें इंसान को एहतियात करनी चाहिए। फिर लतीफा गोई की खातिर जैसा कि गपशप की मजालिस में होता है क्योंकि लतीफा कल की बात है हंसाने की खातिर की जाती है इसलिए बाल बच्चों ये समझने लगते हैं कि वाकयात की दुनिया में भी हंसाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो लतीफा होगा और इस सब्यत्याचक की वजह से भी हमारे बहुत से खानदानों में झूठ की आदत पड़ जाती है कि बच्चे ने आकर गप मार दी और लोगों ने ज्ञान पैदा कर दिया कुछ देर के बाद साथ लेने की असर बात नहीं थी और बड़ा लुत्फ उठाया और सारे लोग हंस पड़े कि खूब इसने शरारत की उतना शरारत कर देते हैं। किसी शख्स पर हंसाने के लिए उसकी कभी झूठी बात नहीं आने जाती जो उस गरीब ने ना की हो लोग उस पर हंस सकते हैं और दो ही जुर्म का मुस्तक होते हैं एक तकबर के और अपने भाई को हकीक देखने के दूसरे झूठ बोलने के या झूठ की हिमायत करने के होते हैं। हमने तो छोटे छोटे से ऐसे रुझान हैं हमारे माशरे में जो झूठ के मददगार होते हैं और झूठ को पालने में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। बस तमाम सोसाइटी की आदत पर नजर रखना भी जरूरी है और ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिससे झूठ कम पेगा। उसके लिए जरूरी है कि हर शख्स निगराना हम सब किसी न किसी मस्जिद में बैठते हैं सब वो घर की हो या बाहर की हो वहां जब किस किस्म की बातें हों जिनके मुताबिक निर्देश मैंने निकाले हुए हैं जिनके मुताबिक खतरा है कि वो झूठ की अर्जाइश करेंगे तो आप लोगों को समझाना चाहिए कि ये दुरुस्त रूप नहीं है और ऐसा शख्स जो झूठ का सहारा लेकर मस्जिद में हर जरूरी बनने की कोशिश करता है ज्यादा बाथरूम बनता है ज्यादा हंसाता है बजाय इसके कि उसको दूर बनाया जाए उसके वो डिस्करेज करना चाहिए उसको उसकी हौसलाशी करनी चाहिए। अगर ऐसी शख्स की बातों पर पहले घर में संस्था न कर दें तो क्या बड़ी ज्यादा बात नहीं है कोई दूर वाली बात है दूर बोल दें कि हमें क्या कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे शख्स की हौसलाशी नहीं होगी बल्कि सोसाइटी से झूठ की हौसलाशी होगी। बहरहाल निगरानी की जरूरत है और हर पहलू से हर जिस से निगरानी की जरूरत है। निगरानी हम आपको सबसे पहले तो मुस्तैद हो जाना चाहिए और वो लोग जो झूठ बोलते हैं और फिर जमात से तस्दीकें चाहते हैं ताकि उनको बड़ी उनको दुनिया के हवाए पहुंचे उनको खोल कर बता देना चाहिए अगर हमारे में ये बात आई कि तुमने झूठ बोला है तो हमारी तरफ से तुम्हें किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, एमपी हो या नहीं हो या अलग है, लेकिन हम झूठों के मददगार नहीं हैं। और ये ऐलान खोल कर सब तक पहुंचा देना चाहिए, जब तक कि उदार नहीं हुई उस तक जो हालतें हुई हैं उनसे अगर सर से नजर कर लिया जाए तो इससे आपसी की एक गंदी आदत में मुबतला लोग आ गए हैं, इनको पहुंचा भी इनके लिए भी तौबा में दरवाजा सुनना चाहिए। इस तरह से अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो ऐसा मुलाकात नहीं, लेकिन तौबा की तरफ मायल करने के बाद इस बात का ऐलान लेकर कि आइंदा आप किसी दुनियावी वक्त मन से ऐसे साथी झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो फिर हमसे किसी खैर की तवक्को न रखें। इसका यह मतलब नहीं सत्य नगर का कि जो उन्होंने झूठ बोला है उसकी तस्दीक करे जमात, हर किसी झूठ की जमात में तस्दीक नहीं करनी, इसका सवाल नहीं कर रहा था। मतलब यह है कि जमाती पहले से इसको सजा ना दी जाए अगर पहले कोई गलती हो गई है और आइंदा के लिए कोई इंसान दवा करता है, लेकिन आइंदा के लिए सख्ती से ऐसे लोगों का मुआवजा होना चाहिए। दूसरा, दोस्तों की मजाहिद को भी निगरान होना चाहिए और अपने दोस्तों में ये बात आदतन कहनी चाहिए, यानी जैसे मुस्तकिलन अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू में आदत के तौर पर दाखिल कर लेना चाहिए कि झूठ के खिलाफ बातें करें, झूठ के बद असरात के मुतल्लिक बातें करें, ये बताएं कि किस तरह सोसाइटियां असरवा हुई हैं, किस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान या हिन्दुस्तान या दूसरे ममालिक झूठ की वजह से मौत के किनारे तक पहुंचे हैं, तमाम अखलाकी कदरें दबा हो गई हैं, किसी कहीं से सोसाइटी में अमन नहीं है। अगर झूठ ना हो तो रिश्वत फरक ही नहीं सकते, अगर झूठ ना हो तो जराये के इंतकाब का ऐसी कोई झूठ मिल ही नहीं सकती जैसे कि हमारे लिए मिली है। झूठ ना हो तो इंसाफ लाजमी मात्र होता है, ये जो ना इंसाफियां और जुर्म जितने भी चल रहे हैं, गरीबों की जगह पर कब्जे चोरी डाके तमाम की बुनियाद दूर कर पर खोलकर मजाले से ऐसी बातें करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि हमें इन आदतों से परहेज करना चाहिए। झूठ के मामले में धर्म में भी जवाब होना चाहिए, वो माएं या वालदैन जो खुदा के साथ पाक तबीयत रखते हैं उनको अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए और इस मामले में पूरी सख्ती करनी चाहिए। सख्ती से मुराद ये है कि जो गैर नारक हैं, मुराद ये है कि अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उस सिलसिले में अपनी नाराजगी का खुला खुला इजहार करना चाहिए ताकि बच्चे को महसूस हो कि उसकी इस हरकत से वालदैन में सख्त तकलीफ पहुंची है और उसने अपना प्यार खो दिया, उनसे आपने वाला प्यार खो दिया। कई तरीके हैं जिनके लिए बच्चे को बड़ी सख्त के साथ पैगाम पहुंचाया जा सकता है। दूसरे ये कि इस माहौल में होने वाले बच्चे बहुत से ऐसे होंगे जो अपने वालदैन या अपने क्योंकि ये भी मैंने ज्यादा मुझे देखा है कि हिन्दुस्तान में भी और यहां भी जो बच्चे शुरू में यहां आ गए और यहां के माहौल में बड़े बड़े हैं, खुदा तला के मदद के साथ उनमें सच बोलने का रुझान अपनी वही नस्बत से ज्यादा पाया जाता है। इसलिए बच्चों को भी मैं निगरान बनाता हूं कि वो अपने वालदेन और बड़ों बुजुर्गों के निगरान बने और जब उनसे वो ऐसी भूमिका अलग तरबी देखें जिससे पता लगे कि वो झूठ की तरफ माए में या तुरंत बोल रहे हैं तो बच्चों को समझाना चाहिए। ये ख्याल रूप से निकाल दें कि बच्चे अगर बड़ों को समझाएं कि ये व्यागन हो तो वे पुरानी भी इनसे साबित है कि नाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बुजुर्गों को समझाया और दो टोक बातें करके सुनाया, बल्कि हर नबी अपने वक्त के बुजुर्गों को समझाता बचपन से ही असलूब रखता है कि वो बड़ों को भी समझाता है, बेटों को भी समझाता है। समझाने के मामले में उम्र का तफावत कोई हैसियत नहीं रहता। बस बाल रखा तो बच्चे का समझाना ज्यादा तौर पर असरअंदाज होता है। इसलिए आपके यहां हमारी जमात में जितने बच्चे हैं उनको भी ये जहाज कालम अपने हाथों में काम करना चाहिए और अपने घर में अपने बड़ों को जो गुरु बोलकर देखें उनको रोकें, उनको कहें कि गुरु बात है, इस्लाम के खिलाफ है, गुलाम की तहरीर के खिलाफ है, अंबिया की सुन्नत के खिलाफ है, ये किस्म की कौमी कुछ भी चीज तुम दूर बोलकर न खुदा के रहोगे न दुनिया के रहोगे। ऐसी सादा बातें कह गई, अगर बच्चा भी अपने वालदेन या गुरुओं को दूर से पाक रहने की हदायत करता है तो उसका बालों का बहुत बड़ा गहरा असर है। बल्कि ऐसे की बाल बालों में बड़े से भी ज्यादा जिनको काटती है और शर्मिंदा करती है। बस सारी सोसाइटी को दूर के चनाव को अलम जहाज को बंद करना चाहिए, उनकी मानसिक बढ़ा के लिए सच सफाई नहीं होती, दुनिया में बहुत से प्यार नहीं होती, सच का अलम बुलंद करना जरूरी है। हमें तो सच्चाई के मामले में सारी दुनिया का रहनुमा बनना है, ऐसे आला और पाक नमूने उनके सामने पेश करने हैं कि दुनिया हमसे सच को सीखे और सच की बारी पुरानी अख्तियार करना सीखे। हर मुकाम पर सच हमारी पनागा बने और कभी भी हम झूठ की शैतानी पनागाहों की तरफ न बढ़े। ये तौहीद खालिस है जो जिंदगी का पैगाम है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो तौहीद के बगैर आप दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। कोई दुनिया की कौम भी दुनियावी मुताबिक के लिए तौहीद की हकीकत को पाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते और सच्चाई पर कायम हुए बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए यहां की जो नगरी की कौम है दुनिया में तरक्की कर रही है, ये निस्पतन एक दायरे में सच्ची है और सच्चाई ही की बरकत है, जिसको मैं तौहीद भी कहता हूं। मेरे नजदीक सच और तौहीद एक ही चीज से जुड़ा है। इसलिए जो कुछ उन्होंने पाया है ये भी तौहीद ही की बरकत से पाया है। अगर अपनी जिंदगी के दीगर लोगों में भी ये तौहीद को अख्तियार करें तो दुनिया के लिहाज से भी निशान तरक्की अख्तियार करें और दीन के लिहाज से भी इंसान तरफ लेकर आता है। इस काम के लिए खुदा ने जमातें के लिए कायम किया है। इसलिए आप पर गुना फर्ज है कि आप सच्चाई में न सिर्फ इन कौमों के हमदर्दा हों बल्कि इनसे आगे निकलें और सच्चाई की बारीक राहें भी इनको दिखाएं और तकवा के आला मकामात की तरफ इनको बुलाएं। ये मराते ये बुलंद गुलंद अखलाकी मराते सच्चाई के सिवा मंजूर नहीं। इसलिए हर जगह हर माहौल में हर मजलिस में दूध की सलाह जहाज करें और सच्चाई का काम न हो और ये दूसरा और माँ के देखें कि जब सारे सहारे आप खुद दिल इरादा तोड़ देते हैं इसलिए ये जगानी सहारे हैं उस वक्त खुदा जरूर आपका सहारा बनता है और जब खुदा सहारा बनता है तो हैर संदेश तौर पर बुलाया जाता है और हैर संदेश तौर पर इंसान का दिल खुदा के वजूद यकीन से भर जाता है। ये कोई मरूसी यकीन नहीं होता बल्कि खुद कमाया हुआ यकीन होता है। जर्मनी से बार मुसलमानों ने मुझे देखे कि बाहर ऐसे हक लिखे हैं जिनसे मुझे मालूम होता है कि अल्लाह की मदद से यहां भी सच का कायम लोग मुजाहिद बंदे खुदा के मौजूद हैं जो इतलाव के वक्त सच लोग हैं, जो खतरों के यहां पर काफी बात में सच लोग हैं। जब दो फैसले के सामने होते हैं या यूं की तरह गई है या सच बोलकर सलाह पानी है या इस जीवन से वापस चले जाना है, इस किस्म के बाद फैसले जब उनको दरपेश होते हैं खुदा तला की फजल और उनकी तौफीक से वो सच बोलते हैं और फिर वो हैरान हो जाते हैं जिन खतरनाक नतज को कबूल करने के इरादे से उन्होंने सच बोला था वो खतरनाक नतज इस तरह चल जाते हैं जैसे उनका वजूद कोई खुदा तला वैक्सीन की हिफाजत करना है। बस सच बोलना है साफ सदा लाजू ने हिफाजत फरमाई या ना करना, इसका नाम करिए। ये कोई शर्त और फौदाबाजी नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये सच की तनावें यकीन सच्ची हैं और इंसान सच की तनाव लेने के नतीजे में अक्सर झूठों में अमल में आ जाता है और झूठ की तनावें यकीन झूठी हैं और अक्सर झूठ की तनाव आज भी होती है और सच भी होती है और दिन हकीकत झूठ आपको किसी खतरे से बचा नहीं सकता क्योंकि झूठ की तनाव झूठी हुआ करती है। बस अगर अपने शरीर में प्यार करनी है गहरे तौर पर हालात का जायजा लेना है तो इसके सिवा चारा ही क्यों नहीं, खुलासी हासिल करें या दिल आखिर अपनी हासिल करें। बचना है तो सच की तनावों में बच सकते हैं, अगर हालात होना है तो फिर झूठ की तनावें आपकी बिल्कुल बनी है, बेशक उन्हें अख्तियार करते हैं। अल्लाह तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम पूरी गहराई के साथ और बारीकी नजर के साथ सच्चाई पर कायम रहें और बड़े से बड़े कला में किसी झूठे खुदा की तरह में आए और ये फैसला कर लें कि तौहीद के साय में मरना बेहतर है बनिस्बत झूठ के साय की बुजाहिर जिंदगी। अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक अता फरमाई।
Thank you.